आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। हुकूमत ने एयादा किया है कि मुल्क में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि उसके पास 74 दिन के लिए रिजर्व जखीरा मौजूद है। मगरबी एशिया की जंग में तेजी आ गई है क्योंकि खबरों के मुताबिक इसराइल ने ईरान के अंदर ताजा हमले किए हैं। उसने ईरान की बहरिया के सरबरा अली रजा तंगसीरी के हलाक होने का दावा किया है। भारत ने अहम मादनियात की तलाश तहकीक को तेज करने और स्टार्टअप की क्यादत वाले कानकनी के इको निजाम को मुस्तहकम किया है ताकि दरामदाती इन्हिसार को कम किया जा सके। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भगवान राम के जन्म की याद में रामनवमी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। और जनूबी एशियाई फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप में दिफाई चैंपियन भारत मालदीव के शहर माले में पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज बताया कि भारत के पास तेल के कुल 74 दिन के लिए जखायर मौजूद हैं, जिनमें खाम तेल की मसनुआत समेत असल जखायर शामिल हैं। नीज दस्तयाब खसूसी जामे जखायर अब से तकरीबन 60 दिन के लिए काफी हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने इस बात का इरादा किया है कि भारत की पेट्रोलियम और एलपीजी सप्लाई मुकम्मल महफूज और कंट्रोल में है। वजारत का कहना है कि खुर्दा तेल के तमाम मराकज में काफी मकदार में सप्लाई मौजूद है और मुल्क में पेट्रोल डीजल एलपीजी की कहीं भी कोई किल्लत नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट।
वजारत ने आज बताया है कि भारत दुनिया भर में अपने 41 से ज्यादा सप्लायर से मजीद खाम तेल हासिल कर रहा है। वजारत ने बताया कि भारत की हर रिफाइनरी 100% से ज्यादा सलाहियत पर काम कर रही है। वजारत ने यह भी कहा कि मुल्क भर में एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। घरेलू रिफाइनरी की पैदावार में 40% इजाफा किया गया है और अब एलपीजी की यौमिया पैदावार को 50 मैट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया है, जो मुल्क की जरूरत से 60% ज्यादा है। वजारत का कहना है कि सार्फीन की तरफ से अफरा तफरी में बुकिंग करने की वजह से सिलेंडर की मांग 89 लाख सिलेंडर तक पहुंच गई थी और ये एक बार फिर कम होकर 50 लाख सिलेंडर तक हो गई है। रियासती हुकूमत के साथ मुशावरत से कमर्शियल सिलेंडर की फराहमी को 50% तक बढ़ा दिया गया है ताकि गैर कानूनी जखीरांदोजी या कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
मगरबी एशिया की जंग में पिछले 6 घंटों में मजीद तेजी आ गई है। खबरों के मुताबिक इसराइल ईरान के अंदर ताजा हमले कर रहा है और पूरे लबनान में अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर रहा है। इसराइली हुकाम ने कहा है कि उनकी फोर्सेज ने इस्फहान के वस्ती ईरानी शहर में बहुत से हमले किए हैं। उन्होंने ईरान की पासदारान इनकलाब की बहरिया के एक सीनियर कमांडर अली रजा तंगसीरी के हलाक होने की तस्दीक की है और उन्हें आबनाए हुरमुज में जहाजरानी की कार्रवाईयों में खलल डालने की कोशिशों के पीछे कलीदी शख्सियत करार दिया है। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लबनान में भी ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें तायर और कफर रोमानी के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा उसने दरियाए जहरानी के जनूबी मकीनों को इलाका खाली करने की वार्निंग भी जारी की है। लबनान की वजारत सेहत ने कहा है कि जनूबी इलाकों में लड़ाई जारी है और 2 मार्च के बाद से इसराइल के हमलों में कम से कम 1094 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 120 बच्चे शामिल हैं। वाशिंगटन में अमरीका ने ईरान पर दबाव में इजाफा कर दिया है कि अगर मुजाकरात नाकाम रहे तो और ज्यादा नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ईरानी हुकाम ने अमरीका की जंगबंदी की इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया है और इसे तवील निकाती फहरिस्त करार दिया है। इसके बजाय उसने समझौते के लिए अपनी शराइत सामने रखी हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसराइल और खलीजी ठिकानों की जानिब ताजा मिसाइल और ड्रोन हमलों की भी खबर दी है। ईरान में सेहत के हुकाम ने इस लड़ाई में मरने वालों की तादाद को अपडेट किया है, जो तकरीबन 1937 अफराद के हलाक होने की है। अमरीका और ईरान के दरमियान बैक चैनल मुजाकरात की रिपोर्टों के माबेन तेल की कीमतों में 5% का इजाफा हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
मुत्तहदा अरब इमारात ने आज ईरान की तरफ से लॉन्च किए गए 15 बैलिस्टिक मिसाइलों और 11 ड्रोन को नाकारा कर दिया। इसी के साथ जंग शुरू होने के बाद से नाकारा किए गए हमलों की मजमूई तादाद 372 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1826 से ज्यादा ड्रोन्स की हो गई है। अबू जहबी में 2 अफराद उस वक्त हलाक हो गए हलाक हो गए जब एक बड़ी शाहराह पर नाकारा बनाए गए मिसाइल का मलबा जा गिरा। मरने वाले एक शख्स की शनाख्त एक भारतीय बाशिंदे के तौर पर की गई है। इसी दौरान खलीजी तावन कौंसिल के हुक्काम ने यह इंतबाह देते हुए फौरी तौर पर सिफारतकारी के लिए जोर दिया है कि जहाजरानी पर हमले और आबनाए हुरमुज को बंद करने की धमकियों ने तमाम हदें पार कर ली हैं और ये तवानाई की आलमी मंडियों में खलल डाल सकती है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काट्स ने आज दावा किया कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC के बहरिया के कमांडर अली रजा तंगसीरी बहरिया के दीगर सीनियर अफसरान के साथ रात में किए गए एक हमले में मारे गए हैं। एक वीडियो बयान में काट्स ने दावा किया कि तंगसीरी बारूदी सुरंगों और आबनाए हुरमुस को बंद करने की कार्रवाईयों के लिए बराह रास्त जिम्मेदार थे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज फ्रांस के अबाइडस वोडी सरने में अपने फ्रांस के हमनसब जीन नोएल बैरोट से बाहमी बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर G7 वज़राए खारजा की मीटिंग में साझेदार ममालिक के साथ शिरकत करने की गर्ज से फ्रांस के दो रोजा दौरे पर हैं। वजीर खारजा ने फ्रांस में G7 वज़राए खारजा की मीटिंग के मौके पर अपनी कनाडा की हमनसब अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने दोनों ममालिक के एडवांस बाहमी एजेंडे पर तबादले ख्याल किया। ये आकाशवाणी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत इंतहाई अहम मादनियात की तलाश और तहकीक में इजाफा कर रहा है। स्टार्टअप पर मबनी कानकनी के इको निजाम को फरोग दे रहा है और मजबूत घरेलू वैल्यू चेन्स तैयार कर रहा है ताकि दरामदात पर मुल्क के इन्हिसार को कम किया जा सके। मादनियात से मुतालिक तहकीक और तरक्की के कौमी ट्रस्ट की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने तलाश और तहकीक को तेज करने, घरेलू सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और इंतहाई अहम मादनियात के शोबे में शिरकत को बढ़ाने के लिए कलीदी तरजीहात पर जोर दिया। कोयले और कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और डॉ जितेंद्र सिंह की मुश्तरका सदारत में मुनाकिदा इस मीटिंग में डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि खुसूसन लिथियम और दीगर इंतहाई अहम मादनियात के लिए तलाश और तहकीक की रफ्तार आलमी मांग और भारत की स्ट्रेटेजिक जरूरियात के ऐन मुताबिक होनी चाहिए। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा कि हुकूमत ने मुल्क भर में हादसात से लाहे खतरे वाली सड़कों की शनाख्त की है और सड़क की हिफाजत को मजीद बेहतर बनाने के लिए वसी पैमाने पर इकदाम किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा अभियान के मौके पर अदाकार आमिर खान से बातचीत करते हुए जनाब नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों के डिजाइन और सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए 40,000 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पॉलिसी इस्लाहात और बुनियादी ढांचे की तरक्की की मदद से ऑटोमोबाइल सनत के शोबे में भारत को अगले 5 वर्षों में आलमी सतह पर अव्वल मकाम पर पहुंचाने के विजन के साथ काम कर रही है।
हमारे देश में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जब मैं मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे और इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था। आज हमारा साइज 23 लाख करोड़ है और अब हमने जापान को भी पीछे डाल दिया है और हम 7वें नंबर से 3रे नंबर पर आए हैं। और मेरे मिनिस्ट्री का ये मिशन है कि हम 5 साल के अंदर हिंदुस्तान को विश्व में पहले नंबर पर लेकर जाएंगे।
आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यौम पैदाइश रामनवमी मनाई जा रही है। इस त्यौहार की गहरी मजहबी और सकाफती अहमियत है और ये लोगों को सच, इंसाफ, अखलाक इकदार और फराइज के अंजामदही के नजरियात की पाबंदी करने की तरगीब देता है, जैसा कि भगवान राम की जिंदगी से जाहिर होता है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान श्री राम हमें मुआशरे के तई अपने फराइज अदा करने की तहरीक देते हैं। नायब सदर ने भगवान राम को सब्र, कुर्बानी और अदल इंसाफ की अलामत करार दिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी रामनवमी के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जिंदगी सच्चाई की राह पर चलने और फराइज की अंजामदही के तई तहरीक देती रहेगी। केरलम में असेंबली इंतखाबात में नाम वापस लेने का अमल आज खत्म हो गया। उधर आसाम में वोटिंग में सिर्फ 15 दिन बाकी बचे हैं। इंतखाबी मुहिम उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। सियासी जमातों ने राय दहिंदगान तक रसाई को तेज तर कर दिया है। उम्मीदवार रैलियों, अवामी इज्तिमात और घर घर जाकर वोटरों से राबता कर रहे हैं। مغربی بنگال میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے مدنظر وہاں کے گورنر رویندر نارائن روی نے آج کولکاتہ میں سرحدی سلامتی فورس بی ایس ایف کی مشرقی کمان کے سربراہ سمیت شرن کے ساتھ ایک میٹنگ کی جس میں بنگلہ دیش سرحد سے متصل علاقے میں سلامتی کی صورتحال اور پولنگ میں بی ایس ایف کے رول کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ لوک بھون میں منعقدہ میٹنگ کے دوران ریاست کی موجودہ سرحدی سلامتی کی صورتحال، تعیناتی کے منصوبے اور انتخابات کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے بی ایس ایف کی تیاری کے سلسلے میں تفصیلی بات چیت بھی کی گئی۔ گورنر موصوف نے بی ایس ایف کی تیاری کی سطح پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انتخابی کمیشن نے مطلع کیا ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات اور ضمنی انتخابات میں ضبط کیے گئے اثاثے 400 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ان میں نقد رقم، شراب، منشیات، قیمتی دھاتیں اور ووٹروں کو لبھانے کے لیے مختلف اشیاء شامل ہیں۔ کمیشن نے بتایا کہ انتخابات والی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں میں انتخابات کو آزادانہ منصفانہ بنانے کے لیے 5100 فلائنگ اسکواڈ اور 5200 اسٹیٹک نگرانی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ کمیشن نے مزید کہا کہ کال سینٹر نمبر 1950 سمیت شکایات کے ازالے کا ایک نظام بھی قائم کیا گیا ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج ملک بھر میں کوچ 4.0 کے نفاذ کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ریلوے کی وزارت نے کہا کہ میٹنگ میں پیش رفت کو تیز کرنے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی تاکہ ریل کی مزید مؤثر کارروائیوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت نے کہا کہ نگرانی کا ایک مرکزی پلیٹ فارم سرکشا بنایا جا رہا ہے جو کوچ تنصیبات کی حقیقی نگرانی اور پیش گویانہ دیکھ بھال کو فعال بنانے کے لیے بندوبست کے نظام کی مشترکہ کارروائیوں کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے بتایا کہ تک کوچ نظام 3103 روٹ کلومیٹرز پر تنصیب کیا جا چکا ہے۔ چھتیس گڑھ کے کانکیر ضلع میں آج 6 ماؤ نوازوں نے پولیس کے سامنے خود سپردگی کی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ نکھل راکیچا نے کہا کہ خود سپردگی کرنے والے کارڈرز میں 5 ارکان کا تعلق راجنند گاؤں کانکیر بارڈر ڈویژن سے ہے جبکہ 1 ممبر ملٹری کمپنی سے وابستہ ہے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ ان ماؤ نوازوں نے پولیس کو 3 ہتھیار بھی سونپے جن میں 1.303 رائفل اور ایک خودکار لوڈنگ رائفل شامل ہے۔ جنوبی ایشیا کی فٹ بال فیڈریشن سیف کی انڈر 20 چیمپئن شپ میں مالدیپ میں مالے کے بین الاقوامی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے پہلے ہی میچ میں آج دفاعی چیمپئن بھارت نے پاکستان کو 3-0 سے ہرا کر شاندار آغاز کیا۔ بھارت شروع سے ہی مقابلے میں حاوی رہا۔ تیسرے منٹ میں وشال یادو نے گرناج سنگھ گریوال کے تھرو کو گول میں تبدیل کرتے ہوئے پاکستان کے حوصلے پست کر دیے۔ اس دوران 64ویں منٹ میں امنگ ڈوڈم کو بہترین موقع ملا جسے انہوں نے گول میں تبدیل کرتے ہوئے بھارت کو 2-0 کی سبقت دلا دی۔ 88ویں منٹ میں بھارت کو پینلٹی ملی، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امنگ دودم نے تیسرا گول کر دیا۔ اس گول کے ساتھ ہی پاکستان کی شکست پر ایک طرح سے مہر لگ گئی۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت اب بنگلہ دیش کے ساتھ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ پہلی مرتبہ منعقدہ کھیلو انڈیا قبائلی گیمز کے آج دوسرے دن چھتیس گڑھ میں تیراکی، ویٹ لفٹنگ، ہاکی اور فٹ بال کے مقابلے ہوئے۔ کرناٹک کی منیکانتا ایل نے 200 میٹر انفرادی میڈلے میں سونے کا تمغہ جیتا اور سونے کے تمغوں کی ہیٹ ٹرک مکمل کی۔ اس دوران اوڈیشا کی انجلی منڈا نے خواتین کے 200 میٹر انفرادی میڈلے میں سونے کا تمغہ جیتا۔ مقابلے میں ان کا یہ دوسرا سونے کا تمغہ ہے۔ تمغوں کی فہرست میں کرناٹک 6 سونے کے اور 3 چاندی اور 1 کانسے کے تمغے کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ اوڈیشا 5 سونے اور 1 چاندی کا تمغہ اور 8 کانسے کے تمغوں کے ساتھ دوسرے مقام پر ہے۔ مقابلوں کے کل تیسرے دن تیراکی، ویٹ لفٹنگ، ہاکی، فٹ بال اور کشتی کے مقابلے ہوں گے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے آج انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل 2026 کے دوسرے مرحلے کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ میچ کے مقامات کے بارے میں تفصیل بعد میں جاری کی جائے گی۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ حکومت نے اعادہ کیا ہے کہ ملک میں ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کے پاس 74 دن کے لیے ریزرو ذخیرہ ہے۔ مغربی ایشیا کی جنگ میں تیزی آ گئی ہے کیونکہ خبروں کے مطابق اسرائیل نے ایران کے اندر تازہ حملے کیے ہیں۔ اس نے ایران کی بحریہ کے سربراہ علی رضا تنگسیری کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارت نے اہم معدنیات کی تلاش و تحقیق کو تیز کرنے اور اسٹارٹ اپ کی قیادت والے کانکنی کے ایکو نظام کو مستحکم کیا ہے تاکہ درآمداتی انحصار کو کم کیا جا سکے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں بھگوان رام کے جنم کی یاد میں رام نومی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اور جنوبی ایشیائی فٹ بال فیڈریشن انڈر 20 چیمپئن شپ میں دفاعی چیمپئن بھارت مالدیپ کے شہر مالے میں پاکستان کو 3-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔